नमस्कार भारत, 6 फरवरी सोमवार, मैं हूं निखिल रंजन। उत्तर प्रदेश में तेज हुआ चुनावी अभियान, प्रधानमंत्री मोदी को दिया जवाब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने।
सेव द कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी, ये हमारा भी स्कैम का नाम है।
उत्तराखंड पर भी चढ़ा चुनावी रंग, लेकिन किसी दल के लिए नहीं दिख रही कोई खास लहर। चौवन साल से भारत में रह रहे पूर्व चीनी सैनिक वांग ची उर्फ राज बहादुर और उनके परिवार से बीबीसी की खास मुलाकात।
52-53 साल है, आज समझिए पैर है, मेरा भाई से सामना मुड़ी बात किया
पहली बार।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। 7 मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले प्रवासियों और शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक के खारिज होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीमा सुरक्षा अधिकारियों से कहा है कि देश में आ रहे लोगों की जांच ध्यानपूर्वक करें। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध खारिज करके अदालत ने अमेरिका की सीमाओं की सुरक्षा को मुश्किल बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंध को खारिज करने वाले जज पर देश की सुरक्षा खतरे में डालने का आरोप भी लगाया है। इससे पहले संघीय अपीलीय अदालत ने रोक को दोबारा लागू करने की अपील को खारिज कर दिया था। अब अमेरिका के जस्टिस विभाग के पास अपना जवाब दाखिल करने के लिए आज का दिन है। वहीं रूस की सरकार पर हत्याएं करवाने के आरोप, कथित आरोप के सिलसिले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बचाव किया है। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में उनसे जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा।
Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why you think our country's so innocent?
आपको क्या लगता है कि हमारा देश निर्दोष है? हमने भी कई गलतियां की हैं। मैं तो इराक में जंग के खिलाफ पहले से ही था। हमने कई गलतियां की हैं और इससे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है। कई हत्यारे हमारे आसपास हैं। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की में सुरक्षा अधिकारियों ने देश भर में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर छापे मारकर करीब 450 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक पकड़े गए लोगों में एक तिहाई को सीरियाई सीमा के पास हिरासत में रखा गया है। अंकारा में पकड़े गए संदिग्धों में ज्यादातर विदेशी बताए जा रहे हैं। नए साल के जश्न के दौरान इस्तांबुल में आईएस के हमले में कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद तुर्की में सुरक्षा बलों ने यह सबसे बड़ा अभियान चलाया है। फ्रांस की धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल फ्रंट की नेता मारी लेपेन ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत कर दी है। मारी लेपेन ने वैश्वीकरण और इस्लामिक कट्टरपंथ पर हमला बोला है। उन्होंने लियोन में पार्टी की रैली में कहा कि वैश्वीकरण ने कई समुदायों का गला घोंट दिया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस के नेता कई दशकों से आने वाले प्रवासियों की वजह से फ्रांस की संस्कृति पर विदेशी मूल्यों को थोपे जाने से रोक नहीं सके हैं। मारे लेपेन ने कहा कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो वो विफल हो चुके यूरोपीय संघ में फ्रांस की सदस्यता पर नई शर्तें लगाएंगी या फिर यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए जनमत संग्रह कराएंगी।
Le mondialisme économique et financier s'appuie sur une pseudo-expertise.
आर्थिक और वित्तीय वैश्वीकरण छद्म विशेषज्ञता पर आधारित हैं, जो कभी भी आर्थिक नाकामी और सामाजिक ध्वंस के सामने घुटने नहीं टेकती। अब आप समझ चुके हैं कि एक व्यक्ति की भूमिका बस एक उपभोक्ता या फिर निर्माता तक ही सीमित कर दी गई है। देश अब राष्ट्र नहीं रह गए हैं कि जिसके नाम पर दिल की धड़कने बढ़ जाएं। अब बाजार में चीजों और लोगों को सिर्फ सामग्री बनाना संभव है, स्वीकार भी किया जाता है और इसे आयोजित भी किया जाता है। लोग अब जनसंख्या का हिस्सा नहीं रह गए हैं। ये थे मारी लेपेन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पेरू के राष्ट्रपति पेद्रो पाब्लो कुजिंस्की ने पूर्व राष्ट्रपति एलेजांद्रो तोलेदो को भ्रष्टाचार के एक मामले में पूछताछ के लिए पेरू लौट आने की अपील की है। राष्ट्रपति पेद्रो पाब्लो कुजिंस्की ने कहा कि ब्राजील की निर्माण कंपनी ओदेब्रेच की तरफ से पेरू में निर्माण कार्य का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए लाखों डॉलर की रिश्वत देने की जो खबर सामने आई है, उससे वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत। बीबीसी रेडियो पर सोमवार की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत में चुनावों की आहट जो सुनाई दे रही है लगातार, अब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव प्रचार का अभियान है वो तीखा होता जा रहा है। इस चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के नेताओं के बीच वार और पलटवार का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर सवाल उठाया। उन्होंने स्कैम को एक बार फिर परिभाषित किया।
तेज आंधी होती है तो छोटी उम्र का इंसान भी उस आंधी में टिक नहीं पाता, इसलिए कोई सहारा ढूंढता है, कोई खंभा भी नजर आ जाए तो पकड़ लेता है। इस बार भाजपा की आंधी तेज है कि यहाँ के मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ लेते हैं, कहीं इस आंधी में खुद ही कहीं उड़ न जाए, बह न जाए, इस चिंता में और लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं।
उधर कानपुर की साझा रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर जोरदार पलटवार किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया।
हमें भी बचाना है, सेव द कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी, ये हमारा भी स्कैम का नाम है। जिन्होंने अच्छे दिन की बात कही, बताओ आपको हमको लाइन में लगा दिया कि नहीं लगा दिया, और किसी के पास 500,000 पुराना बचाओ तो बता दो, अब तो सब उनकी बैंक में है, कम से कम अब बता दो कि काला धन कितना है।
इसी रैली में मौजूद राहुल गांधी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिंता में डाल दिया है।
जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हुई, जो पहले मोदी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी वो गायब हो गई। मोदी जी कोई भी लेवल की बात करें, जैसे बिहार के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के मुंह से बिहार शब्द नहीं निकला, वैसे यूपी के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के मुंह से यूपी शब्द नहीं निकलेगा।
ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड भी चुनावी समर देख रहा है। यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार कमर कस चुके हैं, लेकिन आम मतदाता फिलहाल खामोशी नजर आता है। किसी भी दल के पक्ष में कोई ठोस लहर नहीं दिखती। पिछले 3 चुनावों में बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी आती जाती रही है, लेकिन एनडी तिवारी को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं था जो पूरे 5 साल कुर्सी पर रह पाया हो। ऐसे में मतदाताओं का रुझान क्या संकेत देता है, ये टटोलने की कोशिश की है देहरादून से शिव जोशी ने।
इस गीत के जरिए जनता नेता से ये पूछ रही है कि तुम्हें हम वोट तो दे देंगे, लेकिन उसके बदले तुम हमें क्या दोगे। पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी और पेशे से वकील संजय बलूनी का कहना है कि तीसरे विकल्प का उभरना राज्य हित में जरूरी है।
दोनों का ही एक जैसा ही यहाँ पर वो रहा, मुझे तो कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं दिखा इन दोनों पार्टियों में। जिस हिसाब से भाजपा ने कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, अभी आओ और अभी टिकट पाओ, ये वाली जो इनकी वो रही बहुत बुरी रही, तो इसलिए हम तो इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देंगे, हमारा वोट कहीं और ही जाएगा इस बार।
नोटबंदी के बाद कई मतदाता बीजेपी से सख्त नाराज हैं। ऐसे में बीजेपी की प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे रख चुनाव लड़ने की कोशिश उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। ढाबा चलाने वाले हरिप्रसाद जखपोला,
फिलहाल तो गरीब आदमी से क्वेश्चन जो वोटर होता है, जो लाइन पर जो आज भी लगा हुआ कल भी लगा था शायद कल भी लगेगा, तो वोट सोच समझ के देगा और बीजेपी को तो बिल्कुल नहीं देगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि हम भी बीजेपी मेंटेलिटी के थे, लेकिन इन हालात हमको चेंज कर दिया, फिर हम सोचते हैं वही सरकार ठीक थी।
बौद्धिक बिरादरी की राय भी बटी हुई है। कई लोगों का मानना है कि बीजेपी को इन चुनावों में लाभ मिल सकता है। वरिष्ठ पत्रकार संजय कोठियाल,
अभी तक के जो राजनीतिक हालात है उसमें फिलहाल अपर एज तो फिलहाल भाजपा का दिखाई पड़ रहा है, पर बहुत साफ सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो बागी हैं, जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जिस जिस सीट पे वो प्रभावी रूप से नजर आ रहे हैं, वो उनकी संख्या पिछली बार से ज्यादा बढ़ने की मुझे उम्मीद नजर आ रही है।
इन चुनावों में कुछ टीवी समाचार चैनलों के मत सर्वेक्षणों के मुताबिक भी बीजेपी का पलड़ा भारी रहने वाला है। लेकिन नैनीताल प्रशासनिक अकादमी में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के कोर्स निदेशक डॉक्टर बीएस नेगी ऐसा नहीं मानते।
पब्लिक मूड का जहां तक सवाल है, उत्तराखंड में जो वोटर्स है, एक तो युवा की समस्याएं हैं, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, और दूसरी महिलाओं की समस्याएं हैं। इन दो इश्यूज को कोई भी पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से एक दिशा नहीं दे पा रही है, और ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर उत्तराखंड के चुनाव में होगा।
बीजेपी और कांग्रेस का सामना ज्यादातर सीटों पर अपने ही बागियों से है। यूकेडी और बीएसपी भी अपनी परंपरागत सीटों के लिए जी जान एक किए हुए हैं। कुछ सीटों पर वामपंथी दल चौंका सकते हैं। कुल मिलाकर मतदाताओं में किसी दल की कोई खास लहर नहीं है, और लगता है कि दल से ज्यादा शख्सियत को अहमियत दी जा रही है। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
उत्तराखंड में बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र जारी होने के एक दिन बाद कल कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। संकल्प पत्र के नाम से जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में ज्यादातर फोकस पलायन और रोजगार पर है। कांग्रेस ने 2020 तक पलायन रोकने का वादा किया है। राज्य के हर परिवार में एक सदस्य को रोजगार देने का संकल्प भी किया गया है। तो ये तो थी बात उत्तराखंड के चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव की, बात अभियान की, चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ हो रहा है ये सब आपने सुना। आइए अब जरा आगे बढ़ने से पहले डाल देते हैं नज़र अखबारों पर, जो क्या सुर्खियां हैं ये देखने के लिए हरदा कांडपाल आ चुकी हैं अखबारों के साथ। जी बताइए।
जी आज दिल्ली से छपने वाले सभी अखबारों की जो पहली सुर्खी मैं देख रही हूँ वो है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में जो कल बदलाव हुआ है, दैनिक भास्कर ने लिखा है शशि की कला, अब तमिलनाडु की नई अम्मा, यानी कि तमिलनाडु की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं शशि कला। जयललिता के बाद ओ पनीरसेल्वम बने थे और कल उन्होंने इस्तीफा दिया। द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि वो मंगलवार या फिर गुरुवार को शपथ ले सकती हैं। इसके अलावा एक और खबर है जो सारे ही अखबारों में छाई है, जनसत्ता ने इस पर लिखा है कि जो भी 3 लाख से ज़्यादा नकद लेगा उसे उतना ही जुर्माना भरना होगा, यानी कि जितनी रकम लेगा लेने वाले को जो है वो 100% जुर्माना भरना पड़ेगा। सभी अखबारों की
3 लाख से ऊपर,
जी 3 लाख से ऊपर, 3 लाख से ज़्यादा, तो ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ एक और कदम है। हिंदुस्तान की एक हेडलाइन है, वोट नहीं डालते तो सरकार को दोष भी नहीं दे सकते। अतिक्रमण के मामले में एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी और याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने कभी वोट नहीं डाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वोट नहीं डालता उसे सरकार से सवाल करने का भी कोई अधिकार नहीं है। एक और खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान है ये। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अब जनमत संग्रह कराने का समय आ गया है। एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर पर जनमत संग्रह चाहता है, लेकिन एक बात साफ है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जनमत संग्रह तो इस बात पर होना चाहिए कि आप पाकिस्तान के लोग अपने ही देश में रहना चाहते हैं या फिर भारत में वो मिल जाना चाहते हैं, तो इसकी काफ़ी चर्चा है अखबारों में। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है कि भारत ने पिछले 2 या 3 महीनों में 20,000 करोड़ रुपए के सैन्य समझौते किए हैं, जिसमें असलहा और कई साजो सामान खरीदने की बात की गई है, ताकि सैनिक टुकड़ियां और टैंक, थलसेना और ये सब चीज़ें जो है बहुत ही कम समय में जो है वो जंग के लिए तैयार हो जाए।
बहुत शुक्रिया हरिता कांडपाल अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए। और अब हमारी खास पेशकश। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच 1962 में लड़ाई हुई थी। लड़ाई तो महीने भर में चीन की तरफ से हुए युद्ध विराम के बाद थम गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए लड़ाई जारी रही। चीन के सैनिक वांगची भी उन्हीं में से एक थे। रास्ता भटक कर भारत की सीमा में पहुंच गए और फिर पकड़ लिए, कई साल जेल में रहे, फिर रिहा हुए और छोड़ दिए गए। मध्य प्रदेश के एक गाँव तिरोड़ी में वो अपने देश लौटना चाहते हैं, लेकिन भारत और चीन के ऊबड़ खाबड़ कूटनीतिक रिश्तों की वजह से 54 साल बाद भी उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी है। क्या उनकी हसरत पूरी होगी? सुनिए बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की ये खास रिपोर्ट।
भारत चीन युद्ध में परिवार से बिछड़ने के 54 साल बाद पहली बार वांगची उर्फ राज बहादुर और बड़े भाई वांग चिरयुआन आमने सामने थे। चीन के शांसी में जन्मे 77 वर्षीय राज बहादुर नागपुर से 200 किलोमीटर दूर तिरोड़ी के ग्राम पंचायत के एक कमरे में बैठे थे। उनकी निगाहें मेरे हाथों में मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जमी थीं। स्क्रीन की दूसरी ओर थे 82 वर्षीय वांग चिरयुआन।
हाँ,
करीब 3000 किलोमीटर दूर चीन के शांसी के शियानयांग शहर में वांग चिरुआन एक कमरे में बैठे थे। सिर पर गर्म टोपी, हाथ में चाय का प्याला, चेहरे पर गंभीरता। मोबाइल ऐप वीडियो पर जब दोनों भाई बात कर रहे थे तो पिता के झुर्रियों से भरे चेहरे पर मुस्कुराहट देख उनके तीनों बच्चे अनीता, विष्णु और आशा ने उन्हें घेर लिया था। चीनी भाषा में 17 मिनट चली बातचीत में कभी कभी ऐसा लगता था कि दोनों भाई रो देंगे। मैं शांत दोनों को देख रहा था। बातचीत खत्म हुई, हाथ हिलाकर दोनों ने एक दूसरे को विदा कहा। मैंने राज बहादुर से पूछा, क्या बात हुई?
बात हो गया भैया, कह रहा है यदि चाइना यदि आ जा, अभी चाइना कितना आगे हो गया, तुम दिख के खूब खुश हो जाए, अपने परिवार है भी तो इतने अच्छे है, कितने आराम है, तुम दिख के खुश हो जाए। बस 52-53 साल है आज, समझिए पैर है मेरा भाई से बोल पे सामना मुड़ी बात किया
पहली बार।
भैया अभी तबीयत मेरे मेरे तबीयत ठीक है, मैंने अभी कुछ नहीं है, मैंने अच्छे है, मैं तुम्हारे अभी आना के लिए है, हम जिंदे हैं।
जनवरी 1963 में भारत चीन युद्ध खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद चीन की सेना में सड़क बनाने वाले इंजीनियर राज बहादुर को तवांग में भारतीय सीमा के भीतर पकड़ लिया गया था। सरकार का दावा था कि वो गैर कानूनी ढंग से भारत आए। खुद को पकड़े जाने की घटना को राज बहादुर याद करते हैं।
1963 जनवरी पहले तुम चाइना उस तुम छुट्टी करते है, तो छुट्टी उस रोज में घूमना यंगड़ तड़ पर घूमना नहीं कर गया, घूमना नहीं करे मैं यंगड़ फटक हो गया, रास्ते मुड़ गया, बाद इंडिया के रेड क्रॉस वाले जीप मिल गया, मैं उससे मदद मांगा, तो मदद कचहरी ऐसी मैं चाइना रेड क्रॉस देना का मैं नहीं देना, मैंने सीधा इंडिया अंदर लाए, कोई कागजाज नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं, तो इंडिया गवर्नमेंट से मैंने 7 चेहरे अंदर बंद करा रहे।
उनका दावा है कि वो गलती से तवांग के रास्ते भारत में घुस गए, उन्हें जेल हुई, उन्हें फिर रिहा कर दिया गया, बाद में उन्हें तिरोड़ी में छोड़ दिया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो आज तक वापस चीन अपने घर नहीं जा पाए हैं। तिरपन साल बाद आज भी चीन अपने घर जाना चाह रहे वांगची या राज बहादुर के बारे में कई बातें साफ नहीं हैं। क्या वो युद्धबंदी हैं या भारतीय कानून उन्हें जाने की इजाजत नहीं दे रहा है? चीन का पासपोर्ट होने के बावजूद वो अपने वतन क्यों नहीं जा पा रहे हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। धर्म से बौद्ध राज बहादुर ने भारत में ही शादी की, यहीं बच्चे पैदा हुए। उन्होंने अधिकारियों, नेताओं, प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों को चिट्ठियां लिखी, लेकिन घर जाने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई। एक अनजान देश के दूरदराज इलाके में दशकों बिता देने वाले राज बहादुर का एक दिन भी चीन में परिवार को याद किए बिना नहीं गुजरता। उन्हें भारत से बाहर जाने के लिए जरूरी एग्जिट वीजा का इंतजार है। ये इंतजार इतना लंबा हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। इस इंतजार ने भगवान से उनका विश्वास तक हिला दिया है। हालांकि उनके घर में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें दीवारों पर लगी हैं, साथ में है उनकी माँ की तस्वीर। वर्ष 2002 में 40 सालों में पहली बार राज बहादुर की अपनी माँ से मोबाइल फोन पर बात हुई थी। फोन पर 81 वर्षीय माँ ने कहा था,
माँ कुछ नहीं मर, माँ बस मर आओ, बस माँ कुछ नहीं मर, बस एक शब्द आओ, मैंने से मैं आखिरी उम्र है, मेरे उम्र बहुत हो गए, माँ 90-95 हो गए। 2006 माँ का मेरे 25 जाए पता है, 2006 मेरे ताती जब मर का समय तुम्हारे नाम लेते याद करते, क्या करो, मैंने सोची मैं दुख हो गया, आखिरी माँ का आत्मा कितना दुख पड़ गया, मर का समय मैंने नाम लेके जा रहे, सब मेरे का सब खुशी है, मैंने एक बेटा नहीं मिला, उनका परिवार में नहीं मिले, खाली बच्चे लोग का फोटो मैंने खींच दिए, सब लिख रही है, बस माँ का आखिरी आशी तुम आओ मैंने से मिलो।
ये बताते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वर्ष 2006 में माँ चल बसी। मरते वक्त उनके होठों पर दशकों से बिछड़े राज बहादुर या वांगची का नाम था, जिनके बच्चों पत्नी को आखिरी वक्त भी सामने से वो देख नहीं पाई। तस्वीरों के सहारे ही उन्होंने आखिरी बार बेटे को याद किया और आंखें मूंद ली। वांगची के जीवन के पन्ने इतने ज्यादा हैं कि उन्हें कैद करना समझना आसान नहीं। कई स्थानीय अधिकारियों को भी उनके बारे में पूरी जानकारी तक नहीं। हालांकि उनसे जुड़े महत्वपूर्ण कागजात बालाघाट जिला पुलिस अधीक्षक दफ्तर के विशेष ब्रांच कमरे की एक सिलेटी रंग की अलमारी में बंद हैं। राज बहादुर या वांगची का जन्म मई 1939 में शांसी प्रांत में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, पिता किसान थे। 1960 में वो सेना में शामिल हुए। पांच भाइयों में मंझले राज बहादुर माँ के बेहद करीब थे, उनकी दो बहनें भी हैं। भारतीय सेना ने जनवरी 1963 में वांगची या राज बहादुर को पकड़ लिया। उन्हें जेल हुई, उन पर मुकदमा चला और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। फिर अधिकारियों ने उन्हें तिरोड़ी लाकर छोड़ दिया ताकि वो काम धंधा कर जीवन बसर कर सकें। अधिकारियों ने उन्हें वापस चीन भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं की, ये साफ नहीं। भाषा न समझने के कारण उन्हें बहुत परेशानी हुई। शुरुआत में अनुवादक की मदद से अधिकारी उनसे बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे राज बहादुर ने टूटी फूटी हिंदी सीख ली। 1969 में मैंगनीज की खानों में काम के कारण तिरोड़ी गांव मजदूरों से पटा था। सबसे पहले उन्हें तिरोड़ी थाने लाया गया।
तो हम इस वक्त हैं तिरोड़ी के पुलिस थाने के सामने। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेकर आए?
सबसे पहले पंजाब से अपने बालाघाट थाना लाए। बालाघाट थाने यही लाए।
यहाँ पर बालाघाट थाने। तो यहाँ पर आपको कितने दिन रखा?
ये तो चाहता था उन्हें एक हफ्ता रखा है बस।
कहाँ? यही जेल के अंदर?
ये से ऑफिस का पास है, लखे है, कोई चेयर नहीं बंद नहीं कर रहे, ये खोलो ऑफिस, बस हफ्ता भर पुलिस के अंदर लखे है। पहले एक वो सेठ का सुपरत कर।
ठीक है, चलो हम चलते हैं वहाँ पे। अब सेठ के यहाँ आइए। तो ये सेठ का मकान है?
हाँ, उस समय यहीं हमारे सेठ का मकान है।
अच्छा, ये इलाका, इस इलाके का क्या नाम है?
ये इलाका है तो कंपनी रोड है,
खुजरी चौक।
खुजरी चौक,
खुजरी चौक।
तो यहाँ पर पहले चक्की चलती थी पूरा है?
चक्की तो चलते, चक्की फाजू है।
यहाँ पर जब आपको लाया तो सेठ ने क्या बोला फिर?
वह हमारा काम गबाले मशीन है, वही चलाओ चक्की है।
तो सेठ ने बोला नहीं कि मैं क्यों रखूँ आपको इस तरह?
बोले थानदार सो बात किया, वो सेठ ने ठीक है हमारे बस लोग, हमारे बस चक्की है मशीन है।
क्या क्या? एक तो गेहूं, गेहूं सी
गेहूं पीसना, सब पीसना है।
सरसों भी पीसना?
सरसों एक तेल तेल मशीन है।
स्थानीय लोगों के लिए राज बहादुर उत्सुकता पैदा करने वाली चीज थे। कुछ ने परेशान किया तो कईयों ने प्यार दिया। सुरेश नंदरधने उनके पड़ोसी हैं।
इस मोहल्ले में मैं 1975 में हम लोगों ने इस क्वार्टर में आ गए थे, यानी बहादुर जी जहाँ रहते उसके सामने में पड़ोस में। तब से मैं इनको जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। आज तक पीने खाने में रहे नहीं और किसी से मतलब नहीं रखते, अपने काम से काम रखते बस। हर दुख सुख में इन लोगों बहुत हेल्पफुल इन नेचर है और अधिकांश सहयोग करते हैं, यानी किसी की भी मौत मट्टी से लेके हर काम में इन्हें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं।
कुछ स्थानीय लोगों ने हमें यह भी बताया कि वांगची या राज बहादुर के साथ पुलिस ने कथित तौर पर कई बार मारपीट की। राज बहादुर ने पुलिस की कथित मारपीट पर अधिकारियों को कई पत्र लिखे। ये पत्र आज भी फाइलों में उसी सिलेटी रंग की अलमारी में बंद हैं। एक पत्र के मुताबिक उन्हें इतना पीटा गया कि वो दो महीने खटिया से नहीं उठ पाए।
मैं कहता हूं बोले मैं रोक रोक तंग कुचते रात रोते तंग तो लोग मिट के रात सो के अकेले रोते हैं, क्या कहाँ कहाँ फंस गया, नहीं माँ मिटते हैं नहीं पाते हम, ये तो रोते हैं। मैंने माँ मैंने कितने प्यार है, आज माँ का हाल हुआ।
एक स्थानीय अधिकारी ने बताया जांच के बाद सभी आरोप गलत पाए गए थे। सालों से अकेले रह रहे राज बहादुर पर अब शादी का दबाव बढ़ने लगा था। उन्हें एक स्थानीय ईसाई लड़की पसंद आई, लेकिन धार्मिक संवेदनशीलता के कारण मामला आगे न बढ़ सका। आखिर जबरदस्ती 1975 में एक महार लड़की सुशीला से उनकी शादी करवा दी गई। बेहद गरीब घर की सुशीला के लिए ये रिश्ता आसान नहीं था।
तो हमें अक्ल नहीं थी, लेकिन शादी कर लिए। करने के बाद में एक दो महीना बीत गया, उसके बाद में हमारे समझ में से नहीं आता था, ना भाषा आती थी ना कोई समझ, कुछ भी नहीं। फिर भी हम बोले कि चलो अब जाने दो, कोई कुछ बताए कोई कुछ बताए, वैसे अपन भी चलते थे। फिर शादी होने के बाद में फिर आदत पड़ गई रहते रहते, ऐसे करते करते में दो चार महीना बीत गया, थोड़ा थोड़ा भाषा समझ में आने लग गई। शुरू शुरू में तो लगता ही था सर कि कहाँ से कहाँ हमारे माँ बाप ने शादी कर दिए करके। अब माँ बाप की भी मजबूरी थी, एक माँ थी बेचारी, कमाने वाली, चार भाई बहन थे, तो कहाँ जाते फिर अब हम।
दिन बीतते गए, बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन पिता को सरकारी दस्तावेज नहीं मिलने के कारण परिवार सरकारी सुविधाओं से वंचित रहा। दिन बेहद गरीबी में कट रहे थे। गरीबी के कारण बेटे श्याम की मानसिक बीमारी का इलाज तक नहीं हो पाया और वो चल बसे। राज बहादुर के बेटे विष्णु बताते हैं।
यहाँ पे जब फादर आए तो फादर को यहाँ की सिटीजनशिप थी नहीं। उसके बाद जब फादर को यहाँ की सिटीजनशिप नहीं थी तो उनके बेटे, उनके जो बच्चे थे, यानी हमको भी यहाँ की सिटीजनशिप पहले नहीं दी गई थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पंचायत में हमारा नाम चला और ये सब, हमारा डेट ऑफ बर्थ यही हुआ, ये सब चीज़ें, तो धीरे धीरे हमारा डॉक्यूमेंट्स बने। उसके बाद आज भी फादर का कास्ट सर्टिफिकेट कुछ है नहीं और ना हमारा कोई कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पे। इन चीज़ों से हमको एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आई बहुत सी, कि भाई आप किस कास्ट से एग्ज़ाम फाइट करोगे या जो भी नौकरी के लिए भी बहुत तरह से तकलीफें पैदा हुई हैं इस चीज़ों से, और आज तक जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे हमको इशू नहीं किया गया है।
80 के दशक में एक दोस्त ने राज बहादुर को हवाई पत्र के बारे में बताया। चीन में परिवार को भेजे गए पत्र का जवाब एक महीने बाद आया। तब से आज तक पत्रों का आना जाना जारी है। राज बहादुर ने मदद के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। 2009 में राज बहादुर के भाई का बेटा भारत घूमने आया, जिसकी मदद से उन्होंने चीन के पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दी। आज उनके पास चीन का पासपोर्ट है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार उन्हें भारत से बाहर जाने के लिए एग्जिट पास की जरूरत होगी, जिसे हवाई अड्डे पर दिखाना होगा। बालाघाट के कलेक्टर भरत यादव का पक्ष जानने जब हम उनके दफ्तर पहुंचे तो राज बहादुर से जुड़े तमाम कागजात उनकी मेज पर रखे हुए थे।
मैंने अखबार में ही पढ़ा था, उस दिन मैं यहाँ था नहीं। मुझे भी एक मतलब इस तरह से लगा था कि कैसे व्यक्ति इतने सालों से रह रहा है और जिसके बारे में मतलब सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं है कि भाई वो युद्धबंदी हैं या वो मतलब वो खुद नहीं जाना चाहते या हम मतलब हमारे नियम कानून उनको नहीं जाने दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं है। वो व्यक्ति रह भी रहा है तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब एक अजीब सा लगा था कि ये स्थिति क्यों है, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें मतलब सारे स्तर पे मुझे जो लगता है कि कुछ ना कुछ कमी जिसको हम कह सकते हैं या एक तत्परता जितनी होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी कम रही है। उनको नागरिकता मिल जाए, वो नहीं जाना चाहे उनके ऊपर है, लेकिन वो जाना चाहते हैं तो वो जा पाएं।
बीबीसी ने इस मामले पर गृह मंत्रालय को सवाल भेजे हैं और उनके जवाब का इंतजार है। मैंने राज बहादुर से पूछा, चीन जाने के बाद क्या वो वापस भारत आना चाहेंगे? वो अपनी पोती को गोदी में खिला रहे थे। बोले, मैं इन बच्चों को छोड़कर कहाँ जाऊँगा, मेरा परिवार यहीं है। लेकिन उनकी पत्नी सुशीला को कभी कभी ये भय ज़रूर सताता है कि क्या चीन जाने के बाद वो वापस उनकी ज़िंदगी में आएंगे।
अब डर तो लगेगा ही सर, फिर अब बाल बच्चे हैं, परिवार है, तो उनको देखना पड़ेगा ना, कौन कमाई कमाने वाले हैं। अब उनके रहने पे बाल बच्चों की थोड़ी सी ये हो जाती है ना सहूलत भी,
तो मन में डर है।
हाँ।
क्या करेंगे अगर नहीं आ पाते हैं वापस?
हम नहीं आएंगे तो क्या करेंगे सर अब?
विनीत खरे, बीबीसी, तिरोड़ी गांव, बालाघाट।
और अब खेल की दुनिया में क्या कुछ हुआ है, सुनिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी में।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत टेनिस से। भारत ने कल एशिया ओसेनिया ग्रुप वन डेविस कप के पहले उलट एकल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल की और इसके साथ ही 3-1 की अजय बढ़त हासिल करते हुए मुकाबला भी अपने नाम किया। पहले उलट एकल में भारत के रामकुमार रामानाथन के सामने न्यूजीलैंड के फिन टियर ने टिक ही नहीं सके और रामानाथन ने उन्हें सीधे सेटों में 7-5, 6-1, 6-0 से मात दी। इससे पहले पहले ही दिन भारत ने दोनों एकल मुकाबले जीतकर न्यूजीलैंड पर 2-0 की महत्वपूर्ण बढ़त बना ली थी, लेकिन इसके बाद अनुभवी लिएंडर पेस और विष्णुवर्धन की जोड़ी युगल मुकाबले में माइकल वीनस और आर्टेम सिटाक से हार गई थी। उधर इन दिनों भारत में आयोजित किए जा रहे ब्लाइंड 2020 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मेजबान भारतीय टीम ने अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए कल ऑस्ट्रेलिया को कोची में खेले गए मैच में 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 273 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 18.3 ओवर में ही 144 रनों पर ढेर हो गई। इससे पहले भारत ने बिना किसी नुकसान के निर्धारित 20 ओवर में 272 रन बनाए। भारत के सुनील ने केवल 72 गेंदों पर 163 रन बनाए। वहीं बांग्लादेश भारत के खिलाफ 9 तारीख से हैदराबाद में पहला टेस्ट मैच खेलने से पूर्व कल से हैदराबाद में ही भारत ए के खिलाफ 2 दिवसीय अभ्यास मैच में उतरा, जहां उसने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 224 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की। भारत ए ने कल पहले दिन का खेल समाप्त होने के समय 1 विकेट खोकर 91 रन बना लिए। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
समय की कमी के कारण हम अपनी एक और साप्ताहिक पेशकश वसुतुल्लाह खान की पाकिस्तान डायरी आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। आप ये डायरी हमारे शाम के प्रसारण दिनभर में सुन सकेंगे। और अब समाचारों के लिए भी आप देख रहे हैं कि समय बचा नहीं है, तो निखिल रंजन को दीजिए इजाज़त। शाम 7:30 बजे दिनभर में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।